كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين یہ اتنی آیت مقرر آ رہی ہے جو سے انبیاء کے سلسلے میں اس پر گزر چکی ہے کہ نبی نے ان کو انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ ڈرو الا تتقو جگہ جگہ آیا ہے ڈرو مسئلہ ڈر ہی کا ہے اور انسان کی ذاتی تولو اور کوشش جو ہوتی ہے اگر غور کیا جائے تو وہ سب ڈر سے تعلق رکھتی ہے آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کے لحاظ سے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے لیکن وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے جن کے متعلق اس کو یہ خیال ہو یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں سارا انسان انسانوں کے ذہن کا یہ ہوتا ہے کہ کون ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کون ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اگر غور کریں تو پوری اجتماعی زندگی اسی سے جڑی ہوئی ہے ہم تعلقات رکھتے ہیں دوسروں سے یا بے تعلقی رکھتے ہیں ان سب میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے حساب سے آدمی اپنی زندگی کو بناتا ہے اور تعلقات قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرے گا تو پھر ان کے باتوں سے پرہیز کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند اور اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو ظاہر پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی اور کسی چیز کو نہیں مانے گا جس کا تعلق نیکی سے اور ان باتوں سے جو اچھی باتیں ہیں پھر نفس غالب رہے گا نفس کی حکومت چلے گی جو جی ہمارا جو جی چاہتا ہے وہ ہم کریں گے ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر اصل میں ہر شخص کو آپ دیکھیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو ہماری جو خواہش ہے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہم کریں کیوں نہیں کرتا ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا وہ طریقہ نہیں اختیار کرتا کہ جس سے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں یا کوئی بڑا طاقتور ہے اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ ڈر اس بات سے کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کو یہ نقصان پہنچے گا اور فلاں سے نقصان پہنچے گا اس وجہ سے آدمی برائیوں سے رکتا ہے ورنہ نفس جو چاہتا ہے آدمی سے اسی پر عمل کرے اس کے دائرے سے باہر نہ ہو اس لیے وہ سوسائٹیاں وہ معاشرے جہاں ڈر نہیں ہے تو وہاں آپ دیکھیں وہاں کی زندگی بالکل بہت ہی آزادانہ زندگی ہے نفس والی زندگی ہے کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا ایک امریکہ میں ایک رائے شماری ہوئی تھی اخبارات بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو چوری کرنے پر سزا کا خطرہ نہ ہو تو آپ چوری کریں گے یا نہیں کریں گے تو 80 یا 90% ہمیں اس طرح بتایا نہیں ان لوگوں کا ضرور کریں گے چوری इसलिए जाहिर है कि अगर ये डर नहीं है कोई हमको रोकेगा डर देगा तो क्यों नहीं चोरी करेंगे, जी जा रहा है दूसरे का माल लेना चाहते अब वो इन्यू नहीं जा रहा है तो हमको जबरदस्ती ले लेंगे, लेकिन हम जबरदस्ती इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो जबरदस्ती में उसका मुकाबला होगा और टकराव होगा। इस तरह हर बुरी बात जो नफ्स से ताल्लुक रखती है वो उसको रोकना वही डर से है, डरना किसी से डरे वो। और जैसे मुल्क के कवानीन हैं ये आप देखें कि सब बहुत ही उसके साथ ठीक से चल रहे हैं और हर काम सलीके से हो रहा है, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, क्यों डर? क्योंकि करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी या फला ये करेगा, इस वजह से नहीं करते। और अगर आज़ादी मिल जाए जो चाहो करो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नुकसान, तो दिल खोल करेंगे। तो ये दुनिया का ये मामूल चला रहा है, ये सारी कौमों का हाल यही रहा है, इनका जिक्र कानून आ रहा है, सबके मामले में यही है कि डर, अल्लाह से डरते नहीं तो कैसे लेकिन क्यों अख्तियार करेंगे, अपने नफ्स के खिलाफ क्यों करेंगे? नफ्स जो चाहता है वो करेंगे या वो करेंगे जो आप नसीहत कर रहे हैं? आप नसीहत करने वाले कौन होते हैं? अब हमारे मामले में दखल देने वाले कौन होते हैं? हम जो चाहे करेंगे, आप क्यों बोलते हैं हमारे मामले में? तो यही नबी के साथ उन लोगों का ताल्लुक, नबियों के साथ मामला रहा, नबी समझा रहा कि क्यों समझाते हो तुम, तुमसे क्या मतलब, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो नबी भी कह रहा है कि अला तत्तकून, डरते नहीं हो, यानी तुम्हें जवाब देना होगा कयामत में, और ये जिंदगी के बाद उसी जिंदगी आएगी, वो कहें हम नहीं मानते इस बात को। और ये कि अल्लाह ताला जो है वो गालिब है और वो देख रहा है और वो सजा देगा, हम नहीं मानते। और उसको आसानी से कह देता है आदमी, बात यह है नफ्स कहलवाता है, नफ्स इस बात पर राजी नहीं कि उसको अपने तकाजे को छोड़े, और आप कह रहे हैं अपने नफ्स के तकाजे को छोड़ दो, तो डर। और वही डर जो है वो वहम की सूरत में फिर आदमी से बुत परस्ती कराता है, शिर्क कराता है, यानी जहाँ पर वो देखता है कि हमें खतरा है, हमें कोई नुकसान पहुँचने वाला है, तो इस खतरे को हम कैसे दूर करें? अब वो देख रहा है कि हम दूर नहीं कर सकते, हमारा भाई दूर नहीं कर सकता, हमारा खानदान लोग नहीं दूर कर सकते, तो कोई और ताकत हो सकती है जो हमारे खतरे को दूर करे। किसी ने कह दिया तुम इस दीवार के सामने खड़े होकर इस तरह करो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, करके देखते, उसे मांग रहे हैं, दरख से मांग रहे हैं, कब्र से मांग रहे हैं, बस बहम कि हाँ हो सकता है, ये कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर रहा है तो उस पर नहीं मान रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला को मुतवज्जे करने का मतलब है कि आपसे नस के खिलाफ करें, वहाँ तो ये है कि भाई तुम बुराई को छोड़ो फिर बात करो, बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बुराई के सिलसिले में जो अगर खतरा है तो उस खतरे को दूर करने कहाँ जाएंगे? तो जो किसी ने कुछ कह दिया उसकी बात मान ली, इसलिए फिर अभी इधर उधर मारा फिरेगा, अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, मारा फिरेगा। यही सारी कौमों का हाल रहा है, अल्लाह ने उन कौमों का हाल सिर्फ उन कौमों का हाल बयान किया है कि जिन्होंने हद कर दी, आखिर में अल्लाह ने उनको इसी दुनिया में इसी जिंदगी में तबाह कर दिया, वरना अल्लाह ताला ने यह अपना निजाम बनाया है कि इस जिंदगी में जो खताएं तुम करोगे तुमको समझाने के लिए हम लोग भेजेंगे और तुमको मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, जबर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम उसके बाद भी नहीं बात वाजे हो जाने के बाद अच्छी तरह समझा देने के बाद अगर तुम नहीं मानोगे तो हम यहाँ सजा नहीं देंगे, सजा आखिरत में देंगे। ये हमने जगह इम्तहान की रखी है, इम्तहान में सजा नहीं दी जाती, इम्तहान के बाद जो नाकाम होता है उसको सजा दी जाती है, इम्तहान में तो जो कर रहा है करने दिया जाता है। जैसे आप देखें इम्तहान हाल में तालिबे जिस तरह चाह रहा है लिख रहा है, उस्ताद देख रहा है लेकिन उस्ताद उसको टोकता नहीं, उसको बदलवाता नहीं, क्यों? इसलिए कि इम्तहान हो रहा है, उसकी इस्तेदाद को समझना है। तो इसलिए दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता, आमतौर पर। लेकिन पकड़ना करने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया है, वो नोट किया जा रहा है, उसको नोट किया जा रहा है कि इसने कितनी नाफरमानी की अल्लाह तआला की, बावजूद समझाया गया और वाजे कर दिया गया और वाजे हो गया, फिर भी इसने अल्लाह की नाफरमानी की, नोट कर लिया गया। नतीजा उसका इस इम्तहान कब होगा? आखिरत में होगा। और वह अल्लाह ताला दिखा के करेगा, देखो ये तुम्हारा अमाल नामा है। इसको अमाल नामा कैसे दिखाया जाएगा, कैसे अमाल नामा हो जाएगा? पहले लोग इसको समझ नहीं पाते थे, अब जो सीडी निकल आया तो देखिए कितना आसान हो गया। फिर इसे बैठे हुए लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कंधों पर, जो कुछ आदमी कर रहा है कह रहा है उसको नोट कर रहे हैं, कोई सजा नहीं दी जा रही, नोट होता चला जा रहा है। ये आखिरत में उसके सामने ले आया जाएगा, देखो ये तुम देख लो, ये तुम करके आए हो, अब उसका तुम्हें वो सजा मिलेगी जिसका हमने पहले से तुम्हें इत्तला दे दी थी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कह दिया था कि तुम अगर ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, और वादे कर दिया था और मौका दिया था, एक जिंदगी का एक पूरा हिस्सा दिया था कि तुम सोचो और फिर अब उससे तायब हो जाओ, अब उससे तायब हो जाओ। लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और उसकी कोई तलाफी नहीं की, और तुमको बता दिया गया था अगर नहीं तलाफी करोगे तो ये सजा होगी, लिहाजा ये सजा जाओ, देख लो, देख लेना। लेकिन जब कोई कौम, पूरी कौम अल्लाह ताला के साथ इस्तेहज़ा और तमस्खुर की हद तक पहुंच जाती है तो अल्लाह ताला इस दुनिया में सजा देता है। अल्लाह ताला की नाफरमानी पर सजा नहीं होती, इसलिए अल्लाह ताला इम्तहान ले रहा है कि नोट कर लिया जाए बाद में होगा। लेकिन अगर इस्तेहज़ा करे आदमी, तमस्खुर करे, तो उस वक्त सजा हो जाती है। इसी तरह जब कौम इस हद तक आ जाए, ज्यादती की हद तक, कि नबी की बात मानना तो बड़ी बात है, नबी को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, उस जारे कोई कसूर नहीं, वो तो आपकी हमदर्दी में कह रहा है, कमजोर आदमी है, समझा रहा है आपको, दिल अपना निकाल के दिए रखे दे रहा है आपके सामने, और आप उसको मारने के लिए तैयार हैं, पीटने के लिए तैयार हैं कि तुम क्यों हमसे कहते हो कि नेक बनो, क्यों कहते हो कि तुम परदार मानो, तुम कहते हो कि फला आदतें छोड़ो। और अल्लाह ताला के यहाँ से सिर्फ यही नहीं कि आदमी शिर्क को छोड़े, उस शिर्क के साथ शिर्क को सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह ने करार दिया, शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़र में, इसलिए फरमा दिया कि हर गुनाह माफ हो सकता है, शिर्क गुनाह नहीं माफ होगा, साफ साफ है, हर गुनाह माफ हो सकता है, शिर्क का गुनाह नहीं माफ होगा, इल्ला एक आदमी तौबा कर ले तो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस दुनिया से चला गया तो अगर तौबा किए हुए तो शिर्क का गुनाह नहीं माफ होगा, तो शिर्क से बोलिए। उसके बाद फिर दूसरी आदतें हैं, उन सब का तस्करा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के यहाँ यह है कि तुम शिर्क को छोड़ दो उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी को मतलब जिंदगी और नेक जिंदगी बनाओ, झूठ न बोलो, दूसरों को ईज़ा न पहुँचाओ, और गलत काम न करो, बेहाई के काम न करो, ये सब भी ज़रूरी है और इसकी भी सजाएं, सजाएं बता दी गई हैं, और वह सजाएं मुअय्यन हो जाती हैं, और सख्त सजाएं हैं उसकी। और यही नहीं बल्कि नबी का काम ये उनकी तरफ भी तवज्जो दिलाए, इसलिए आप देखेंगे कि जो इन अंबिया का जिक्र है तो हर नबी की कौम के जो खुसूसी अमराज थे उनका भी जिक्र है, शिर्क न करो और इन बातों से बचो। और ख़ास तौर पर जो नबिया का तस्करा है आम तौर पर उनकी मुख्तलिफ जो बुराइयाँ थी उनकी, मसलन कौम आज वो जब अपनी वो अपने तकबर अपनी अजमत की वजह से दुनिया को परेशान किए हुए थे, कमज़ोर लोगों को के लिए मुसीबत बने हुए थे, जुल्म करते थे और बिल्कुल बहुत ही लोगों की लोगों को लिए मुसीबत बने हुए थे, और ताकतवर थे, अपनी शान दिखाते थे और जुल्म करते थे। उनको उनकी इस बात को समझाया नबी ने कि ये तो अपनी हरकत छोड़ो और शिर्क छोड़ो, शिर्क छोड़ो और ये चीज़ें छोड़ो। इसका फिरौन है, फिरौन अपने यहाँ की जो दूसरी कौमें थी बनी इसराइल जो बाहर के थे उन पर जुल्म करते थे और शान दिखाते थे। बनी इसराइल को उन्होंने बहुत एक पीस कर रखा था, खादिम नौकर बना रखा था और बहुत इनके साथ ज्यादा करते थे। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी कहा कि भाई इनको छोड़ो, इन बेचारों क्यों तुम मुसीबत डाले हुए हो, इनको छोड़ दो, ये चले जाएं अपने अपने इलाके में जहाँ के आए हैं वो चले जाएं। तुमने इनको बिल्कुल अपने नौकर और बिल्कुल जलील करके और जुल्म के साथ इनको तुमने दबा रखा है, इसकी तरफ तो जो भाई तो अल्लाह ताला की तरफ से नबी जो हिदायत देता है वो सिर्फ शिर्क नहीं, शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, वो सबसे पहली चीज है। उसके बाद फिर ये आदतें जो इंसानी इंसानी फितरत के खिलाफ हैं, इंसानी उसके अखलाक के खिलाफ हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिलाता है। और इसी तरह दूसरी कौम में कौम लूत इसका जिक्र आ रहा है, तो कौम लूत के वो फहाशी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बिल्कुल एक आम चीज बन गई थी। और वैसी फहाशी जो गैर इंसान गैर फितरी है, तो उनको हज़रत अलैहिस्सलाम ने उनकी तलकीन उनको की, शिर्क छोड़ो आदतों को छोड़ो, और उन्होंने मुकाबला किया लूत का और उनको परेशान किया कि तुम क्यों समझाते हो, कौन तुम, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो, हम जो करें चाहें करेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले। जब नबी को परेशान करते करते उस हद तक बात पहुंच जाती है कि अब नबी के जिंदा रहना मुश्किल है और किसी वक्त उनको कत्ल कर दिया जाएगा, जब इस हद तक बात पहुंचती है अल्लाह ताला का होता है अच्छा बस तो तुम नबी को कत्ल करोगे, हम तुमको कत्ल किए देते हैं। तुम इतने दिनों से तुमको समझाया जा रहा है, बरसा बरस से समझाया जा रहा है और उसके बाद भी तुम शेर बने हुए हो और बदतमीजी भी उतरे हुए हो, तो कब तक तुमको इसका मौका दिया जाएगा, तो खत्म कर दिया। तो उन कौमों का जिक्र आमतौर पर आया है कि जिन पर अजाब आया, अजाब आने का मतलब ये कि उनकी हरकतें इस हद तक बढ़ गईं कि फिर वो काबिल रहस नहीं रह गए, लेकिन आखिरत के अजाब से बचेंगे नहीं। ये अजाब उनकी उस बेहूदगी का है और जो गुनाहों का अजाब है वो तो आखिरत में होगा, वो तो होगा। यहाँ पर बेहूदगी का की सजा है ये कि इतने बेहूदा हैं कि ये दुनिया में रहने के लायक नहीं है, ये इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने के लायक नहीं है, इनका वजूद जो है ये दुनिया के लिए मुसीबत है, दुनिया के ऊपर ये एक बार है, उस वक्त अजाब आता है। अजाब यूं जल्दी जल्दी नहीं आता, अजाब बहुत मौका देने के बाद अल्लाह ताला भेजता है। तो नबी आप देखिए नबियों ने जो समझाया है, पहली बात अल्लाह तत्तकून, तुम डरते नहीं हो, एहतियात नहीं अख्तियार करते कि भाई सोचो तो कि तुमको बताया जा रहा है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुमको कितनी बड़ी मुसीबत पेश आएगी और कितना तुम्हें कितना इसका इसकी सजा मिलेगी आखिरत में, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। और हर तरह तुमको समझाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, उसने कुरान में उस सूरह नूह में परवरदिगार इनको हमने हर तरह समझाया, नरमी से समझाया, सख्ती से भी समझाया और बहुत निजी तरीके से भी समझाया और इज्तिमाही तौर पर भी समझाया। समझाने के जितने तरीके हो सकते हैं हमने इख्तियार किए, लेकिन ये अब इनसे उम्मीद नहीं है, अब इस पक्ष में जोक नहीं लगे, इनकी इस्लाह हो ही नहीं सकती। जितने तरीके हो सकते हैं इनको समझाने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं, तब तो ये जमीन का बार है। हज़रत अलैहिस्सलाम 950 साल रहे, बड़ी लंबी मुद्दत उन्होंने समझाया होगा और सब्र किया होगा। समझाने का मतलब ये थोड़ी है नबी समझाना, जो नबियों के हाल जो लिखा है तो नबी का समझाना ये था कि नबी को मुकाबला करना पड़ता था, सहना पड़ता था, उसका नबी समझा रहा है वो मजाक उड़ा रहे हैं, नबी समझा रहा है वो जूता फेंक देंगे, पत्थर मार देंगे, जख्मी कर देंगे, यही करेंगे, लेकिन नबी सब्र ज़ब्त के साथ समझा रहा है और नबी कोई फायदा नहीं उठा रहा है, अपनी वही मामूली जिंदगी के साथ वो बर्दाश्त कर रहा है और समझा रहा है और अल्लाह ताला देख रहा है कि कि उसके नबी के साथ क्या सलूक हो रहा है और उस नबी के साथ कि जो अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह देख रहा है कि हमारे खातिर नबी कितना बर्दाश्त कर रहा है। कोई हद है? नबी की मदद न की जाए। नबी ने अपना दिल निकाल कर रख दिया और हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त की, हत्ता कि मौत का खतरा हो गया। तो अब इन लोग इन पादरियों को दुनिया में रहने की जरूरत नहीं, इन पादरियों को ज्यादा, लेकिन आजाद छुट्टी तो ही मिलेगी। ये अजाब उनकी बेहूदगी का है और उनके गुनाहों का अजाब आखिरत में होगा। तो नबी बहुत दिल से कहता है कि भाई अपने को अपनी फिक्र करो, तुम बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हो, अगर तुम नहीं मानोगे, हम तुमसे दिल से कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे अखलाक से कह रहे हैं कि बहुत अल्लाह ताला की तरफ से डराया गया है। और अल्लाह ताला यूं ही थोड़ी कि मजाक थोड़ी, अल्लाह ताला डराया तो इसका मतलब ये कि तुम्हें सजा मिलेगी, तो मान जाओ। और यही कर रहे हैं तो कहते हैं नबी अल्लाह तौन तो यहाँ हदूद के कौम का हाल बयान किया गया, मुख्तसर हाल बयान किया गया, दूसरे का भी है। कर्जवत कौम लूत ने मुरसलीन, लूत की कौम ने, लूत के लोगों ने अपने रसूलों और अपने नबियों को झुटलाया। इसका मतलब ये है कि और लोग भी नबी के साथ, दूसरे भी नबी के तर्ज के लोग होंगे, उन्होंने भी समझाया होगा। फिर हतलूत ने बहुत ज्यादा उसमें मेहनत की। इस कारण लोगों को खूब लूजन अला सकून, जबकि उनसे उनके उनके भाई लूत ने, यानी कौमी भाई हुआ के अल्लाह सकून, असली लूत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इराक से हिजरत की तो उन्हीं के साथ इन्होंने हिजरत की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईमान ले आए थे वहीं इराक में, पामना लघु लूत पानवीन खुद है कि उन पर लूत उन पर ईमान ले आए लूत। और हज़रत इब्राहिम ने जब हिजरत की तो उन्होंने इनके साथ हिजरत की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ आके ठहरे, जो इलाका फिलिस्तीन कहलाता है कनान का, और वहीं करीब में बहर मजीद है, समंदर है, उसको बहर मजीद कहते हैं। उसी के किनारे शदूम शहर आबाद था। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को वहीं उनको मुकर्रर किया गया अलग अलग तरह से कि वहाँ जाके उनको समझाएं उन लोगों को। वो बुरी आदत में पड़े हुए थे और सारी खराबियाँ थी, लेकिन उनकी बहुत बड़ी बुरी आदत जो थी फाहशी की, वो बहुत बढ़ी हुई थी, बहुत आम हो गई थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लोग इस काम करते थे, समझाते थे उनको, और वो लोग उनको परेशान करते थे। तो बात यहाँ तक पहुँची और उसकी तफसील भी है वाकई कि जब अजाब आया तो अजाब फौरन नहीं आ गया। अजाब के फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए पहले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो अजनबी शक्ल में थे इंसानी सूरत में आते थे, फरिश्ते जो आते हैं तो इंसानी शक्ल में। तो लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन उनकी ज़ियाफ़त का इरादा किया कि मेहमान हैं, गए और एक बछड़ा उन्होंने ज़बह किया और उसको जल्दी से काट के लाए और उसको करके और मेहमान के मेहमानों के सामने रखा। तो देखा वो खाते नहीं तो उनको वैसे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ये कोई मुखालिफ तो नहीं है, इसलिए कि ज़माने में दस्तूर था कि अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाने आया है कत्ल करने तो आप खाना नहीं खाएगा, अगर खाना आप उसने खा लिया तो उस वक्त फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उन लोगों का था। तो इब्राहिम साहब कुछ डरे कि ये फिर ये कौन लोग हैं, तो लोग समझ गए उनका भाई हम फरिश्ते हैं, हम आए हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ हज़रत अलीसान की अहलिया सामने थी और फिर उन्होंने कहा कि हम बशारत देते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है, हज़रत इसहाक की बशारत। तो उनकी अहलिया जो दोनों मुअम्मर हो गए थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद वक्त ताखिर से हुई थी, बुढ़ापे में औलाद हुई, पहले हज़रत इस्माइल हुए फिर हज़रत इसहाक हुए। और इस्माइल का वाक़ आप जानते ही हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि वो बच्चा जो बुढ़ापे में हुआ था बड़ी तमन्नाओं के बाद उसको कहा गया ले जाके जंगल में डालाओ वो डाले। और वो एक पहला बच्चा था और इतनी मुद्दत के बाद हुआ था, कुर्बानी दी थी। बड़ा तो हर साख के फिर उसके बाद को अल्लाह तआला ने अता फरमाया उनको और फिर याकूब उनके बदमिश कर दो। तो अब उनकी बीवी ने जो सुना कैसे हो जाएगा, हम ना इस लायक हैं ना ये लायक हैं, अब बेटा हमारा कहाँ हो सकता है। तो बहसों ने कहा कि अल्लाह ताला के लिए तो मुश्किल है कोई चीज अल्लाह ताला करने का। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं कौम लूत पर अजाब के लिए हम मुकर्रर किए गए हैं, वहाँ पहुँचाएँ अजाब। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने वहाँ से लूत हैं, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह ताला जानता है इसको लूत हैं, यानी अल्लाह ताला खुद ही उनको इनकी हिफाजत करेगा। तो वो गए वहाँ और लूत के यहाँ गए तो उसी तरह गए, लूत उनको मेहमान समझे उन फरिश्तों को, उधर उनको मेहमान समझा और उधर कौम के लोगों ने लोगों को मालूम हो गया कि इनके यहाँ कुछ नौजवान आए हैं कुछ लड़के आए हैं, वो भीड़ लग गई। अब हर लूट ने उनको बहुत समझाया कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ यहाँ से, ये हमारे मेहमान आए हैं जाओ यहाँ से। और कहने लगा क्यों आप क्यों हमें रोकते। तो अब हर लूट परेशान हो गए, उनको ये ख्याल हुआ कि ये इनको इनके साथ बुरा सलूक वो करेंगे, हरकत करते हैं, हम कैसे इनकी हिफाजत करें। तो वो सो बेचैन हो गए, कहने लगे काश कि हमें कोई सहारा मिल जाता कि हम इस मुसीबत को टालते किसा। तो फरिश्ते वहाँ भी हो गए, फरिश्ते उस वक्त खामोश थे, उनका हम तो अजाब की खबर देने आए हैं, आप फिक्र न कीजिए इनको हम समझ लेंगे। और उन्होंने एक फरिश्ते थे उन्हें एक हाथ हिलाया और वो सब उधर उधर गिरे, सब भागे, भगदड़ मच गई। और ये खबर उन्होंने ली कि सुबह होते इन पर अजाब आएगा, आप यहाँ से रात में निकल जाइए ताकि आप महफूज रहें, या इस बस्ती को अल्लाह ने तबाह करने का फैसला कर लिया। अलबत्त आपकी बीवी जो साजिश में सही रहती हैं वो यही रहेंगी, उनको अजाब होगी। रात ही रात में अपने जो लोग उनके ईमान ले आए थे उनको लेकर वहाँ से निकल गए, और सुबह सवेरे अजाब आया। वो अजाब था वही आदर्श सानी था कि जमीन फटी और उससे मलबा निकला और गया फिजा में और सब गिरा, सब बस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। और शायद हाँ वो सफर खत्म हो गया, उसी का जिक्र है, यहाँ मुख्तसर जिक्र है, दूसरे का भी जिक्र आया है। और वो जगह जो है बहर मैयत जो है उसको बहर मैयत इसलिए कहते हैं कि वहाँ कोई जानदार चीज़ समंदर में नहीं होती, समंदर में मछलियाँ होती हैं और चीज़ होती है समंदर में और दरिया में, लेकिन वो समंदर ऐसा है कि जिसमें कोई जानदार चीज़ नहीं होती, बहर मैयत है। तो आलमन वजह उसकी यही है, जहाँ अजाब आता है वो जगह आवासी हो जाती है, अल्लाह ताला की महबूब जगह होती है। इसीलिए हुजूर सल्लम ने किया जब कौम समूद के इलाके से गुजरे जा रहे थे तो कहा कि यहाँ जल्दी निकलो इस इलाके से, यह अजाब का इलाका है और यहाँ अगर कोई आटा वाटा बनाया गया तो वो इस्तेमाल न किया जाए और यहाँ कोई ठहरे नहीं। लेके अल्लाह का गज़ब जब किसी बस्ती पर नाजिल हो जाता है अजाब की सूरत में तो बस्ती वो रहती है यानी मनहूस हो जाती है और वो खजाना हो जाती है। देख अल्लाह का गज़ब ऐसी चीज़ तो है नहीं कि गज़ब हुआ ख़त्म हो गया, नहीं वो जगह अल्लाह ताला के नज़र अब वो है, वो वहाँ अगर ठहरेगा रहेगा तो उसको उसकी जुल्मत उस पर अभी होगी, जुल्मत का नुकसान होगा। तो इसका इम्कान है कि वो बहर मैयत जो है यानी वो वहाँ कोई जानदार चीज़ उससे समंदर में रह नहीं पाती मुद्दा। तो हर इसी वजह से होगा कि अंदाज ये है कि वहाँ अजाब आया तो समंदर भी मुतासर हो गया होगा। तो कहते हैं कि लूदन जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा अरे डरते नहीं हो तुम अल्लाह तक क्यों डरते नहीं हो अल्लाह से, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ तुम्हारी तरफ और बहुत अमानतदार हूँ, यानी अल्लाह ने जो बगा उनको दिया है वहाँ पूरी अमानतदारी का पहुँचा रहे हैं, पूरी खुदगर्दी के साथ इसमें नहीं कह रहे हैं। फतकुल्ला वाती हूँ, अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, यानी अपनी हरकतों को छोड़ो। वमा असलकुम अलैहि मिन अजर, और तुमसे मैं किसी मुआवजे का तालिब नहीं हूँ कि मैं मुझे तुम कमजोर हाल में देखकर तुम सोचते हो कि हम शायद इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ इससे हमें हमारी इक्तिसादी हालत दुरुस्त हो जाए। इन नजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मुझे जो कुछ मुआवजा मिलना है वह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलेगा। अर्थात तुम शुक्रान मिल आलमीन, तुम इन पर ये मर्दों पर हम आते हो बुरे नियत से, सारे आलमों में तुमने यही काम अपने दिन में किया है। वो तजरून खलकुम रबुकुम मिन अज़्वाजिकुम, और तुमने छोड़ रखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारे रब ने जो बीवियों का निज़ाम तय किया है उसको छोड़ रखा है। बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि बात यह है कि तुम बड़े ज्यादती करने वाले लोग हो जो हदूद इंसानियत से तजावुज करते हो, इंसानी जो तकाजे हैं और जो शराफत है उससे भी तकाजे तुम आगे बढ़ जाते हो। कालू लही लमतम थेदीन, उन्होंने कहा कि लूट अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम तुमको यहाँ से बाहर निकाल बाहर करेंगे। फारा इन्नी ले अमलकुमारी, कहा बारा तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारे अमल से बहुत नफरत करता हूँ, मैं तुम्हारे अमल से बहुत नफरत करता हूँ, और जाहिर है नफरत करता हूँ तो मैं बराबर इसकी फिक्र करूँगा और कोशिश करूँगा। रब नजनी वाली मायामलून, फिर मैं अल्लाह ताला को खताब कर मुखातब कर कहा कि परवरदिगार परवरदिगार मुझे नजात दे दे और मेरे घर वालों को नजात दे दे इन लोगों से, इनकी हरकतों से जो ये करते हैं, यानी इनकी मुसीबत हमारे घर वालों और हम पर ना आए। फिर जैना चुनाचे हमने उनको नजात दे दी और उनके घर वालों को नजात दे दी सबको, सिवाय उनकी बूढ़ी औरत के, उस बूढ़ी के जो उनकी बीवी है फिर गाबरीन, उनको यहाँ रह जाने वालों में शिमत रखा है। तो मदमन राखे से बाकी को हमने तबाह कर दिया। वाम तरना अलही मतरन, और उन पर हमने बारिश की यानी पत्थरों की, और उसकी जमीन से जो आकर सजानी पहाड़ हुआ, पहाड़ से जो मलबा निकला आग के टुकड़े और वो पत्थर उसने ऊपर जाकर गिरे, पूरा शहर डूब गया उससे। हमने उन्हें बारिश की पत्थरों की फसा मदर मुंजी, तो बहुत ये इन लोगों को जिनको डराया जा रहा था उन पर जो बारिश हुई बहुत बुरी बारिश हुई, बहुत बुरी बारिश, सख्त उन पर अजाब आया। इन नफीजा आदि के लाया, इसमें निशानी है जिसे और अम्बिया के जिक्र में आया कि इसमें निशानी है, यानी निशानी का मतलब ये है कि ये वाकया जो है ये इसको मकामी वाकया न समझो, ये इबरत का वाकया है, ये एक निशानी है जिसको देखकर तुम समझो कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, और ये इंसानों में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इंसानों को होशियार रहना चाहिए। अम्बिया के जो कौमों का जो तस्करा है उसको सामने रखना चाहिए, अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को महफूज रखना चाहिए उन हरकतों से कि जो अम्बिया की कौमों की हरकतें बताई गई हैं, इसलिए कि उस पर अल्लाह का कदम नाजिल होता है, और अल्लाह का ऐसा कदम नाजिल होता है कि यहाँ भी और फिर आखिरत में भी। और गुनाहों पर तो ये है जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है, ये आखिरत में उनकी सजा होती है, लेकिन ये गुनाह इस तरह के जो बिल्कुल फिरौनी अंदाज में जो गुनाह होते हैं तो फिर उनको अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सजा देता है। जो इन फिजा लिए लाया इसमें निशानी है। ओमाकाना अक्सर हूँ मोमिनी, इनमें से अक्सर ईमान वाले नहीं थे, और बेहद तुम्हारा रब गालिब भी है और रहम वाला भी है।